ओम शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आप बिहार की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1973 में होम्योपैथी में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप मधुबन धरनी में आए और तब से लेकर यहीं पर अपना सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप हमारा जो मेडिकल विंग है उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। शांतिवन में जो हेल्थ केयर सेंटर है, एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, उसके आप डायरेक्टर हैं। माउंट में जो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है उसके आप ट्रेजरर हैं, खजांची। और इसके साथ साथ आपने माउंट में 40 से भी अधिक होलिस्टिक हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की है। इतना ही नहीं, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी पर भी कॉन्फ्रेंसेस करने की आपने ही पहल की है। 175 से भी अधिक आपने होलिस्टिक फेयर, हेल्थ के मेले, स्वास्थ्य मेले पूरे भारत भर में आयोजित किए हैं। साथ साथ में हेल्थ अवेयरनेस के कैंपेन भी बहुत सारे चलाए हैं। न सिर्फ इतना, लेकिन इंडो नेपाल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में भी आपने भाग लिया है। और नशीली दवाओं का दुरुपयोग, इसकी रोकथाम के लिए भी आपने भारत के मुख्य नगरों और गांव में खूब सारे सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, कैंप्स आयोजित किए हैं। तो बहुत ही प्रतिभावान आप व्यक्तित्व हैं। इतना ही नहीं, हेल्थ से संबंधित होने के कारण, डॉक्टर होने के कारण, मधुबन के जो भी हमारे सीनियर्स हैं, दादियां, दीदियां, वरिष्ठ दादाएं, भ्राताएं, सबके करीब रहने का आपको बहुत सुंदर अवसर मिलता है। और इसीलिए उन सबके साथ के अनुभव के खजाने आपके पास हैं। जुलाई का मास, दीदी मनमोहिनी का मास, तो दीदी और दादियों की खूब अनुभव इनके पास है, तो आज वही अनुभव शेयर करने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। तो हम सुनते हैं भ्राता जी से दीदी दादियों के साथ के अनुभव। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। दीदी का मास है, जुलाई मास आते ऐसे तो दीदी की याद हमेशा रहती है, लेकिन जुलाई मास में विशेष दीदी की याद आती है। तो दीदी एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे। बहुत रिच फैमिली में उनका जन्म हुआ था, सिंध हैदराबाद में जन्म हुआ। छोटेपन में उनके मां बाप ने उनकी मैरिज कर दी, लेकिन दीदी बहुत भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में बहुत लौलीन रहती थी। उनको पता पड़ा कि बाबा सत्संग कराते हैं, ओम की ध्वनि लगाते हैं और जो भी सत्संग में जाता है वो ट्रांस में चला जाता है, साक्षात्कार होता है। तो दीदी को भी किसी ने बताया तो दीदी सत्संग में गई। जब दीदी सत्संग में गई तो बाबा सत्संग करा रहे थे तो पीछे बैठी और सारा टाइम बाबा को देखती रही, लेकिन बाबा में श्री कृष्ण उनको दिखाई देता था। वो अपने मन को अपने आंखों को इधर उधर करती थी, भाई कोई मेरा भ्रम तो नहीं है, ये रियल है या मेरी भ्रम है। फिर भी कृष्ण ही दिखाई देता था। सत्संग पूरा हुआ, ट्रांस में नहीं गई, दिव्य बुद्धि से। तो दीदी ने बाबा को कहा कि मैं गुरु नहीं कर सकती हूं, पति ही गुरु है तो दूसरा गुरु मैं नहीं कर सकती। बाबा ने कहा कि बच्ची गुरु बनने की तो कोई बात ही नहीं है, गुरु करने की हमने कहा ही नहीं है, हमने तो कहा है कि तुमको पवित्र रहना है, कृष्ण के दुनिया में जाना है तो पवित्र रहना है। अब ये बातें दीदी को धुन सवार हो गई कि मुझे पवित्र रहना है। अब पवित्रता को उन्होंने व्रत ले लिया, घर में गई, पति हैं तो अभी आप समझते हैं झगड़ा होने लगा, तो पति नाराज, लेकिन बिजनेस था, विदेशों में बहुत रिच फैमिली थी। दीदी के साथ उनकी मदर, क्वीन मदर, इतनी रिच फैमिली के थी कि दीदी का मदर का नाम ही था क्वीन मदर। सचमुच वो क्वीन की तरह थी, हम लोगों ने तो देखा था, यहां रहती थी। तो क्वीन मदर भी दीदी के साथ गई, फिर उनकी छोटी बहन शीलेंद्रा दादी, शील दादी के नाम से पुकारा जाता था, बाबा उनको बहुत प्यार से गवर्नर कहते थे, ये बॉम्बे के गवर्नर है। यज्ञ का सारा कारोबार शील दादी करती थी, खरीदारी करती थी, तो बाबा इनको गवर्नर कहता था। तो ये तीनों यज्ञ में रोज रोज आने लगे, तो दीदी का ससुर शाखाराम उनका नाम था, वो भी उनको लगा कि भाई क्या है, जा रही है हमारे तीन तीन घर से तीन लोग जा रहे हैं, क्या है, मैं देख के आऊं, उनको भी अच्छा लगने लगा। तो ये बातें अब सिंध में, जब जो भी उनके सिंधियों के परिवार से जो लोग जाते थे, वो पवित्रता हमारा मेन धारणा है, पवित्र सब रहने लगे घरों में, तो झगड़ा होने लगे। फिर लोगों ने दादा को, सखाराम को मना कर दिया कि तुम कहाँ जाते हो, देखो परिवार में ऐसे हो रहा है, झगड़ा हो रही है, और उस संस्था में आप जाते हो, नहीं जाना है आपको। तो भाई मुखी थे, बड़े थे, तो लोगों को बात मान करके भले उनको अच्छा लगता था, लेकिन लोगों को मान करके वो छोड़ दिए, नहीं जाना जाने लगे। फिर उन्होंने भी दीदी को बंधन डालने लगा, उनका ससुर, नहीं आपको भी नहीं जाना है। दीदी तो दीवानी थी, गोपी नाम ही था, कृष्ण की गोपी थी, और कृष्ण उसको मिल गया तो बोले कि सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ सकती हूं। तो पति से झगड़ा हुआ, उसने मारपिटाई कर किया, तो अपने लौकिक घर में आ गई, मां के घर में आ गई, और फिर वहां से बाबा के पास जाने लगी। तो ये तीनों बाबा के पास आ गए घर छोड़ करके। उन्होंने कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम मेरे घर से निकलो। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके घर से चले जाते हैं। बाबा के पास गई। अभी इतने बड़े रईस परिवार के तीन तीन लोग आ गए, बाबा कैसे रखेगा? तो बाबा ने अपने बाजू में, अपने बंगलों के बाजू में एक दूसरा बंगला किराए पर ले लिया और बोला कि आप लोग इधर रहो। कोई आता था तो वो बाबा कहते थे यहां देख लो, यहां कोई नहीं है। वो कहां है आप देखो, बाजू बाजू में कहीं रहते होंगे वो लोग, तो बाजू में रहते थे। भोजन सारा दिन, ज्ञान सारा दिन रहना बाबा के पास, सोने जाने के लिए वहां, लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं ये हमारे पास नहीं रहते हैं, अपना मकान लेकर के अपने अपने क्या करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। युक्ति से फिर क्या हुआ कि बहुत अपोजिशन हुई, लेकिन दीदी की लगन, दीदी की परख, फिर बाबा सिंध हैदराबाद से कराची में चले गए। थोड़े दूर पर वो दूसरा शहर था जिसका नाम, तो ये लोग भी वहां शिफ्ट कर गए। तो ये लोगों को भी वहां भी अपने पास बाबा नहीं रखा, क्योंकि बहुत रईस फैमिली के थे, बहुत धनी फैमिली के थे, लोग आएंगे तो क्या जवाब देंगे हम। तो दूसरा बंगला लेकर के, और दीदी बहुत बुद्धिजीवी थी, वो सिलाई मशीन खरीद के दो चार, और सिलाई करना पहले जानती थी, इतनी रईस फैमिली के थी फिर भी वो अपने पांव पर खड़ा रहना चाहती थी। उनके घर वाले, उनके जो बड़े भाई का जो बहू थी, वो पूछती थी भाई ये क्या कर रही है, अब तो नहीं मुझे दान पुण्य करने का शौक है, दूसरे की कमाई को हम दान पुण्य करेंगे तो मेरा उतना भाग नहीं बनेगा, हम मेहनत करके कमा करके और दान पुण्य करेंगे तो मेरा भाग बनेगा, इसलिए मैं सिलाई करती हूं और इससे जो पैसा आता है मैं दान करती हूं तो मुझे बड़े खुशी होती है। परिवार से लेकर के दान करती है तो उतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे की कमाई है, मेरा उसमें क्या भाग बनेगा, अगर कुछ बना तो थोड़ा बनेगा, लेकिन जब हम खुद मेहनत करके काम करते हैं तो मेरा बहुत भाग बनेगा। इतना बुद्धि दीदी के तीक्ष्ण थी। तो बंधन धीरे धीरे कट गया, लोग आए भाई वो तो सिलाई करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो लोग अपना ये करते हैं, हमारे साथ तो कोई उनका लेनी देनी नहीं है। लेकिन सारा दिन यज्ञ का, यज्ञ में सेवा करते थे, भोजन वहीं, सब कुछ वहीं। फिर धीरे धीरे उनका बंधन कट गया, दीदी क्वीन मदर शील दादी तीनों के तीन ब्रिज, एक और उनकी कजन सिस्टर थी ब्रिज शांता जो पूना में रहती थी, वो भी आ गई। तो ये सब बहने हरदेवी दादी पांच एक परिवार से आ गए। आ गए, दीदी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना रईस फैमिली में जन्म हुआ था लेकिन पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन बुद्धि उनकी बहुत तीक्ष्ण थी। आप देख लीजिए, पढ़ाई से बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि विवेक लक्षण से, सद्गुणों से बनता है, आता है। तो दीदी यज्ञ का कारोबार करने लगी, संभालने लगी, मम्मा के साथ दीदी मिल करके यज्ञ संभालती थी। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे आ गए, जैसे गुलजार दादी, यीशु दादी, ये सब छोटे छोटे छह साल, पांच साल, सात साल के बच्चे आ गए। तो बाबा ने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, यज्ञ में ही उनको कुछ बहने पढ़ी लिखी थी, उनको नियमित बना दिया कि भाई इन बच्चों को पढ़ाना। कुछ माताएं आ गई जिनको जो पढ़े लिखे नहीं थे, मुरली भी नहीं पढ़ सकते थे, तो उनको भी प्रौर शिक्षा जो बोलते हैं, जो बड़े हो जाते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो सरकार भी उनके लिए प्रबंध देती है कि रात को प्रौर शिक्षा जिसको बोलते हैं। तो उस तरह से इन माताओं का अलग क्लास होता था। तो एक बार मम्मा उनको क्लास ले रही थी, तो दीदी को बोला कि अच्छा राम लिखो, मोहन लिखो, गणेश लिखो, ये सिंपल शब्द था, लिख दिया। मम्मा बोली कि धृतराष्ट्र लिखो, अब धृतराष्ट्र लिखने दीदी को नहीं आता था, दो बार बोली, तीन बार मम्मा बोली, तो मम्मा बोली कि लिखो ना, क्यों नहीं लिखती है? और तो मम्मा अंधों की क्या नाम लिखना है मेरे को, ये नहीं बोलती है कि मुझे धृतराष्ट्र लिखने नहीं आता है, तो बोलती है कि मम्मा अंधों के क्या नाम लिखने आता है, अच्छे लोगों का नाम बताइए ना। तो इतना बुद्धि दीदी का था। दीदी की महानता, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनके साथ में, उनके हाथ में डायरी पेन हमेशा होता था। दीदी हमेशा बाबा के टाइम में या बाबा के जाने के बाद, दादी जब मुरली सुनाती थी तो हमेशा दीदी पहले जाके बैठ जाती थी 5 मिनट पहले, फिर दादी अपने टाइम पर 6:30 पहले मुरली होता था, आजकल तो 7 बजे होता है, तो दादी आती थी। उन दिनों में रात्रि क्लास भी, अभी भी रात्रि क्लास होता है, उन दिनों में रात्रि क्लास होता था, तो दीदी डायरी पेन लेकर के 9:45, 9 बजे से शुरू होता था, 9:45 चली जाती थी। मीटिंग वगैरह अगर दादी करती थी शाम को रात को, तो जब 9:30 होता था, 9:45 होता था, तो दीदी कहती, दादी अब बस करो, ये क्लास में जाना है। इतना मतलब क्लास का महत्व था। दीदी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि पॉइंट निकालती थी। आज जो मुरली में हेडलाइन में सार आता है और मीठे बच्चे पहले, ये कुछ नहीं था, ये दीदी ने निकाला था। प्रश्न उत्तर दीदी ने निकाला था। ये सारी दीदी की देन है। इतना रुचि थी बाबा के मुरली से, महावाक से, कि नहीं पढ़े लिखे होने के बाद भी इतना मुरली का सार निकालती थी। बाबा मुरली चला के चले जाते थे तो दीदी क्वेश्चन आंसर आपस में मुरली का करती थी 10 मिनट। इतना दीदी को रुचि था। मुरली से पॉइंट्स निकाल करके केवल डायरी में ही नोट नहीं करती थी दीदी। उन दिनों में बहुत सिंधी बहने होती थी बेंगलोर में, दिल्ली में, हर जगह, क्योंकि सिंधी ही थे, तो उनको नोट बना करके भेजती थी। आज बाबा ने ये कहा, हमारे यहां मुजफ्फरपुर में संदेशी दादी होती थी, शांतामन दादी की लौकिक बहन, तो दादी ने, दीदी एक तरफ इनलाइन लेटर होता था, तो एक तरफ छोटा जो हिस्सा होता है, एक पूरा पन्ना होता है, एक तरफ आधे में एड्रेस होता है, आधे में खाली होता है, तो दीदी आधे में जो खाली होता था उसमें वो लेटर लिखती थी। तो दीदी ने एक बार लिखा था कि अपने कर्म बंधनों को काटना है तो योग से काट सकते हैं, और नहीं तो कर्मणा सेवा से कर्म बंधन को काट सकते हैं। तो संदेशी दादी को लेटर आया था, तो दादी ने क्लास में सुनाया, दीदी ने ऐसे ऐसे लेटर लिखा है, उसमें क्वेश्चन आंसर में ये बातें लिखी थी। तो हम लोगों को, मैं और रामस्लोक नीचे रहता है भाई, तो हम दोनों एक क्लास फेलो थे, एक साथ होम्योपैथी में एडमिशन लिया था, वो 8 दिन पहले लिया था, 8 दिन हम पीछे लिए थे, तो हम दोनों क्लास फेलो थे। तो ये बातें हम लोगों को लग गई कि भाई योग तो नहीं लगता है, शुरू शुरू के दिन की बात सुना रहे हैं, योग तो नहीं लगता है, चलो कर्मणा सेवा तो हम लोग अच्छे हैं, हेल्थ भी ठीक है, कर्मणा सेवा करेंगे। तो कॉलेज से आते थे और नाश्ता करके और सीधा सेंटर आते थे, सेंटर के A to Z हर काम करते थे। भाई कर्मणा सेवा करेंगे तो कर्म बंधन कटेगा, तो दिल से करते थे। वो संस्कार आज भी है, 50-52 साल 55 साल हो गया यज्ञ में रहते, वही धुन है, वही लगन है, कोई भी सेवा हो। व्यसन मुक्ति नशा मुक्त भारत अभियान 4 मार्च को सरकार के साथ पहला बार ब्रह्मा कुमारी के साथ MOU साइन हुआ, धुन लग गया, पूरे भारत में सब उसी लगन से काम कर रहे हैं, बाबा करा रहा है। तो दीदी कहने का भाव यह है कि दीदी इतनी गहराई से मुरली सुन करके और ये करती थी, एक शब्द से जीवन बदल देती थी। तो यहां हम जब आए तो दीदी का एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत, तो मम्मा के साथ इनका रोल था, मम्मा अव्यक्त हो गई तो ये दिल्ली में थे। और भाई इतने रईस फैमिली के, आप सोचो जब सेवा पर ये गए, उसके बीच में मैं थोड़ा सा एक और भी उनकी विशेषता सुनाएं। 47 में बंटवारा हुआ तो सारे हिंदू सिंधी सभी लोग इंडिया में आ गए, केवल मुस्लिम लोग रह गए। संस्था बाबा ने शिफ्ट करने की सोचा तो वहां के सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, आपको नहीं जाना है, कोई तकलीफ है कोई बात है मुझे कहिए, मैं हर प्रकार के मदद करूंगा, लेकिन आप लोगों को यहां रहना है क्योंकि आप लोगों की तपस्या से हमारा पाकिस्तान ऐसा है। ठीक है भाई, सरकार छुट्टी नहीं देती है, तो नहीं वो लोग आए और सभी लोग 47 में आ गए। लेकिन शिव बाबा का आदेश हुआ कि नहीं बच्चे इंडिया में शिफ्ट करो, और वहां शिफ्ट करो जहां पहाड़ हो, वहां पहाड़ पर तपस्या करो। कहां समुद्र के किनारे तपस्या कराया, अब आप सोच सकते हैं जो बॉम्बे में रहता है या जो समुद्र के किनारे गोवा या कहां समुद्र के किनारे रहता है, वहां ठंडी होती नहीं है। तो इन दादियों को ठंडी क्या है पता भी नहीं था। तो बाबा ने, शिव बाबा ने जब संदेश दिया तो उन बाबा ने सरकार को लिखा पढ़ी किया, सरकार ने छुट्टी दिया। जब परमात्मा का आदेश है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भले आप शिफ्ट करिए। कहां शिफ्ट करेंगे, 350 बच्चे हैं, ये 350 लोगों को लेकर दो लोग हों तो चलो कहीं होटल में रह जाएंगे, कहीं धर्मशाला में रह जाएंगे, 350 लोगों को कहां रखेंगे। तो बाबा ने दीदी को भेजा कि जाओ इंडिया में जगह देख करके आओ, ऐसा स्थान देखो जहां जाकर के 350 लोग रहे। दीदी के साथ दो लोगों को और बाबा ने भेज दिया। दीदी इंडिया में आई, बॉम्बे आई, इंदौर गई और स्थानों पर गई, कहां भी इतना बड़ा मकान नहीं दिखाई दे, इतना बड़ा ये कैंपस नहीं दिखाई दे, 350 लोग रहे। तो इनके गुरु गंगेश्वरानंद जी, पहले अज्ञान काल में बहुत रिच फैमिली के थे, दादी दीदी सिंधियों का वो माना हुआ गुरु था, लेकिन उसको आंख से दिखता नहीं था, लेकिन बहुत विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान था गंगेश्वरानंद। आज भी उनका भी माउंट में एक छोटा सा आश्रम है। तो वो उनके पास दीदी गई मिलने के लिए, तो वो आवाज से, आहट से पहचान लेते थे। तो गंगेश्वरानंद जी के नजदीक गई तो उन्होंने कहा, गोपी कैसे हो, कैसे आना हुआ, जबकि उनको दिखता नहीं था। तो दीदी ने कहा कि हमको बाबा ने भेजा है कोई जगह देखने के लिए, अब आप मुझे बताइए कि कहां हम जाएं, कहां जगह ऐसा ये होगा। उन्होंने कहा कि माउंट आबू जाओ, पहाड़ है और वहां राजाओं की कोठियां बनी हुई है, राजाएं गर्मियों में आते हैं, सारा साल बंद रहता है, देखो वहां अच्छा लगता है, तो स्थान बहुत अच्छा है, हिल स्टेशन है, तपस्या की जगह है, ऋषि मुनियों की जगह है, वशिष्ठ आश्रम है, गौमुख है, दत्तात्रेय का मंदिर है, तो ये सारी यादगार है यहां। दीदी ने उनके कहने से यहां आई, यहां चारों तरफ देखा, तो भरतपुर राजा के भरतपुर कोठी, जिसको ब्रिज कोठी पहले कहा करते थे, आप आते हैं तो वो ब्रिज कोठी लेफ्ट साइड में हिल्टन होटल के पीछे श्मशान के बाजू में था, बड़ा कोठी था, दीदी को पसंद आ गया और फिर दीदी देख करके राजा से मिली, पोखरण वहां जाकर के भरतपुर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग वहां आना चाहते हैं तो हम आप लोगों को दे देंगे, तो उन्होंने रेंट पर दे दिया। शिफ्ट होकर के सिंध हैदराबाद से स्टीमर में आए, जो पाकिस्तान से आए वो पाकिस्तान से एक आल्पीन लेकर के नहीं आए, खाली हाथ लोगों को इंडिया आने के वहां के सरकार वहां के लोगों ने ये किया कि यहां से कुछ नहीं ले जा सकते हैं, आश्रम के लिए एक आल्पीन भी नहीं आपको छोड़कर जाना है, सब कुछ ले जाइए क्योंकि ये परमात्मा का चीज है, हम यहां रख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने स्टीमर करके हर चीज स्टीमर में पैक करके दे दिया और कोई भी चीज छूटा नहीं, सब कुछ लेकर के ओखा बंदरगाह पर आए और वहां से ट्रेन से अबू रोड आए। जून का महीना था और 350 लोगों को अभी कैसे ऊपर चढ़े माउंट, तो सब लोग अपना अपना बिस्तर और अटैची छोटी जो भी था वो लेकर के माउंट अबू पैदल आ गए। कुछ लोग बुजुर्ग थे वो बसें सरकार ने दी, बसों में आ गए, वहां सेट हो गए। जून से बारिश शुरू होती है, पहले बारिश बहुत होती थी, 10-10 दिन तक धूप नहीं दिखाई दे, सूरज नहीं दिखाई देता था, बारिश बहुत होती थी, बारिश होती थी तो ठंडी हो गई। अब वहां समुद्र के किनारे रहने वाले ठंडी क्या होती उनको पता नहीं, यहां तो बहुत ठंडी हो गई, काफी लोग बीमार हो गए, बेगरी पार्ट वहां से शुरू हो गया। भाई पाकिस्तान से तो कुछ जो था तो खा पी गए, खत्म हो गया, आए इंडिया, अब वहां से बेगरी पार्ट शुरू हो गया। बेगरी पार्ट जब शुरू हुआ तो शिव बाबा ने कहा कि इन बच्चों को सेवा पर भेजो, कुछ सेवा करेंगे तो लोग मदोगरी देंगे, कुछ न कुछ ये करेंगे तो यहां यज्ञ का कारोबार चलेगा। तो दीदी जो इतने रईस फैमिली को, दीदी को बाबा ने दिल्ली भेजा। दीदी कभी दिल्ली गई नहीं थी, स्टेशन पर उतरी, देखा कहां जाएं, आज हम मान लीजिए कि आपके यहां आए तो आप गाड़ी लेके आएंगे, गुलदस्ता लेके आएंगे, रिसीव करेंगे, अभी दीदी को कौन रिसीव करे, कोई है ही नहीं अपना। तो दीदी स्टेशन से उतर करके बाहर गई, कुल्ली से पूछा यहां धर्मशाला है, उनके साथ मनोहर दादी थी और भी एक दो दादियां थी, तो धर्मशाला में लोग गए, वहां धर्मशाला वाला ने कहा कि 2 दिन से ज्यादा हम नहीं रहने देते हैं, 2 ही दिन देते हैं, कोई भी आए 2 दिन रहो। अच्छा भाई 2 दिन तो रहने दो। वो तैयार होकर के अभी जमुना के तट पर, भाई कहां जाए सेवा करने के लिए, किसके घर में जाए, जान पहचान हो तो आप किसी के घर में जाए ना, ऐसे कैसे किसी घर में चले जाए। बोले कि जमुना के तट पर जाकर के वहां कहां बैठेंगे, तो धर्मशाला में बोरी फटा हुआ टूटा हुआ होता है ना, लोग सब्जी उब्जी लाते हैं, बड़े प्रोग्राम करते हैं तो टूटा हुआ फटा हुआ बोरी कौन ले जाएगा, धर्मशाला में फेंक के चले जाते हैं। वो बोरी लेकर के दीदी और दादियां जमुना के कंठे पर बिछा करके तपस्या कर रही है। इतना पावरफुल तपस्या तीनों दादियों की, माताएं बहने जमुना जी से स्नान करके और पूजा करके बाहर निकले, तो ये 3 देवियां, हम गए थे तो कुछ नहीं था, ये 3 देवियां कहां से आ गई, और इनके ललाट पर इतनी चमक, इतनी आकर्षण। तो बड़ा नजदीक आकर के माताएं पूछी आप लोग कौन हो, अतः हम माउंट आबू से आए हैं, पहाड़ से आए हैं, किस लिए आए हैं भाई? अतः हम योग सिखाते हैं, सत्संग करते हैं, अतः हमको कराएंगे, योग सिखाएंगे? हाँ। माताएं बैठ गई। देखो कैसे, कहां रईस फैमिली, कहां टूटी हुई बोरी पर बैठी है, ख्याल नहीं है, लेकिन नशा है, योग सिखाने आई हूं। सत्संग शुरू हो गया, सत्संग पूरा हुआ तो माताएं पूछ रही है कि हम आप लोग कहां ठहरे हैं, हम आएंगे आपके से मिलने के लिए अलग से। बोले कि वो फलाने धर्मशाला में ठहरे हैं। वो एक माता ने कहा कि नहीं, वो ठीक नहीं है, आप हमारा बंगला खाली है उसमें चलो, हम आपको चाबी देते हैं, वहां रहो। दृढ़ निश्चय, जरा भी अभिमान नहीं है कि मैं इतनी रईस फैमिली के हूं, टूटी फूटी बोरी पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। लगन और सेवा, बंगला मिल गया, रहने का स्थान हो गया, सेवा शुरू हो गई। दीदी की इतनी परख शक्ति, लोगों को परख लेती थी एक मिनट में। फिर मम्मा ने अव्यक्त हुआ तो बाबा ने दीदी को बुला लिया, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ अकेले बाबा कैसे संभालेंगे, बहनें थी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी। तो दीदी को कंट्रोलर, यहां मम्मा के बाद दीदी को जगह दिया बाबा ने, और मम्मा के स्थान पर दीदी वहीं सोती थी, जो भी मम्मा यूज करती थी दीदी को बाबा ने दे दिया। दीदी इतना एडमिनिस्ट्रेशन में इतना स्ट्रांग थी। दीदी दादी, दादी तो यहां नहीं होती थी, दादी सेवा पर होती थी, बॉम्बे पटना, बाबा जहां सेवा शुरू होता था बाबा भेज देता था। तो दीदी, हम लोग यंग थे, कॉलेज से आए थे, भोजन करते थे तो आपस में बातें करते थे, दीदी चक्कर लगाती थी चुपचाप, बड़ी उम्र थी, घुटने में दर्द था, तो लक्ष्मी दादी का हाथ पकड़ करके चक्कर लगाती। दीदी आई, सन्नाटा, पूछती थी, अच्छा बाबा की याद में भोजन कर रहे हो? सन्नाटा। ये रोज दीदी चक्कर लगाती थी। मां थी, इतना प्यार देती थी, इतना स्पिरिचुअल, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में एकदम, दीदी के टाइम में जो यज्ञ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मैं आज दिल से कह सकता हूं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। कोई मजाल, कोई इधर से इधर कुछ हो नहीं। हम लोग थोड़ा सा बच्चे थे, वहां गेट पर अभी तो एक ये बन गया है, वहां पहले एक स्टैंड था लकड़ी का, वहां एक घंटी, मंदिर में जो घंटा होता है ना, उसी तरह एक घंटी लगा था। विजिटर आते थे तो घंटी बजाते थे, पहरे वाला उठ के जाता था। तो हम लोग घूमने जाते थे शाम के टाइम, तो घंटी बजा के जाते थे, तो पहरे वाला आता था, देखता था कोई नहीं है, तो जाके रिपोर्ट करता, दीदी ये हमारे को तंग करते हैं। बचपना, तो दीदी बुलाती थी, भाई क्यों इनको तंग करते हो? नहीं, तंग किसी को नहीं करना चाहिए। मैंने इतनी छोटी सी बात भी दीदी उसको फाइनल करती थी। दीदी किसी के सुनी सुनाई बातों में नहीं जाती थी, दोनों पार्टी को बुला करके और दोनों की बातें सुन करके डिसीजन इतना लेती थी, दोनों खुश होकर के जाते थे। इतना दीदी में ये पावर था। बाबा अव्यक्त हो गए तो दीदी दादी, दादी चीफ एडमिनिस्ट्रेशन में वो आ गई, चीफ बाबा ने उनको बनाया, क्योंकि दीदी को भेज दिया, क्योंकि बाबा के साथ दीदी का बहुत गहरा ये था, संबंध कहो, स्नेह कहो, बहुत गहरा। तो बाबा ने, बाबा को तो पता था कि मुझे अव्यक्त होना है, वो अलग कहानी है, वो सुनाएंगे तो टाइम हो जाएगा। तो दीदी को इलाहाबाद भेज दिया। दादी यहां कभी नहीं रहती थी, कभी पार्टी लेके आई, दो दिन हो गया पार्टी गई, तो दादी का दिल होता था, जैसे कोई कोई दिल हो गया कि मधुबन में एक दिन और दिख रहे हैं, बाबा के साथ एक दिन और रहे, तो बाबा बोलते हैं नहीं बच्ची, बादल आया भरा, अब जाओ जाके सेवा करो। लेकिन उस दिन 17 तारीख की 16 तारीख की बात है, पार्टी चली गई, दादी जाकर के बाबा से बोली, क्योंकि बाबा कहे जे जाओ, इससे तो हम जाकर के बाबा से छुट्टी ले और जाएं। तो दादी गई बाबा के पास, बाबा पार्टी गई मैं जाऊं? बाबा ने कहा कि बच्ची अगर काम नहीं है तो रुको। तो दादी को तो खुशी हो गई, पहली बार बाबा रोक रहा है, तो दादी को रोक लिया और पार्टी चली गई। 16 तारीख की बात है, 17 तारीख को बाबा की तबीयत थोड़ा नरम थी, तो बाबा ने दादी को हाथ पकड़ करके सारा यज्ञ दिखाया। दादी को एक तरफ संकल्प चले कि मेरे को तो यहां रहना नहीं है, बाबा ही मेरे को क्यों दिखा रहा है, ये स्टोर है, ये फैंसी स्टोर है, ये कपड़े का स्टोर है, ये है वो है, ये कारपेंट्री है, ये गौशाला है, ये क्यों दिखा रहा है। दादी तो समझे नहीं, लेकिन बाबा को तो सब कुछ पता था, बच्ची को सौंपना है तो सब कुछ दिखा के जाए। 18 तारीख को थोड़ा और तबीयत तय हो गई, तो दादी ने कहा कि बाबा तबीयत आपकी ठीक नहीं है, तो आपने जो नोट लिखा है मुझे दे दीजिए, क्योंकि बाबा मंथन करते थे, चिंतन करते थे, कुछ लिख भी लेते थे। तो बाबा हम सुबह जाकर के हम क्लास करा देते हैं, आप थोड़ा रेस्ट करिए। तो बाबा बोलेगा अच्छा बच्ची ठीक है। तो बाबा सुबह मुरली नहीं चलाया, दादी चलाई। फिर दादी आई तो जितने पत्र थे, 108 पत्र थे पेंडिंग, बाबा सब पत्र यीशु दादी से मंगा करके 108 पत्र लिखा। फिर दादी के हाथ पकड़ करके चारों तरफ कहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कैसे चल रहा है, सारा हिसाब किताब दादी को समझाया। शाम के टाइम में बाबा ने कहा कि बच्ची सारे बच्चों को संकल्प चलता होगा कि बाबा सुबह मुरली नहीं चलाए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो ये मैसेज ठीक नहीं है, बाबा आज क्लास कराएगा शाम को, ऐसे रोज कराते थे लेकिन आज जल्दी कराएगा, सभी बच्चों को 7:30 भोजन करा दो, 8:30 बजे बाबा क्लास कराएगा। दादी ने कहा कि जी बाबा। यहां एक बेल होती थी, घंटी बजती थी, भाई घंटी बज गया है चलो भोजन करेंगे, क्योंकि पहले रिकॉर्ड वगैरह नहीं था, ग्रामोफोन नहीं था, बेगरी पार्ट थी। तो भोजन करके दादी ने कहा कि सभी लोग क्लास में आ जाएं, बाबा आज जल्दी क्लास कराएंगे, चूंकि सुबह क्लास नहीं कराया था। बाबा क्लास में आए और क्लास करा करके और वहां से बाहर निकलते हैं, तो बाबा कभी भी गेट से बाहर निकलते हैं तो हम लोग मुंह उधर करके पीठ इधर करके निकलते हैं ना, बाबा ऐसे नहीं निकलते थे, बाबा बच्चों के तरफ मुंह करके नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर पीछे जाते हैं। तो दरवाजे पर खड़ा होकर के बाबा कहा कि निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बच्चे बनना है, और बाबा विदाई लेता है, हाथ नहीं जोड़ा, ये तो मैं जोड़ रहा हूं, बाबा बोला कि बाबा विदाई लेता है। तो किसी के ख्याल में नहीं आया कि आज विदाई शब्द क्यों कहता है। तो बाबा रूम में आ गए तो कुछ दादियां पीछे पीछे आ गई कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो चलो रूम से बाबा को छोड़कर आते हैं। बाबा इस रूम में जहां आप लोग तपस्या करने जाते हैं, तो ऐसा ही रूम में चारपाई पर बैठ गया, टांगे नीचे लटकी हुई है, दादियां खड़ी है, दादी बड़ी दादी खड़ी है, सबको दृष्टि देने लगा, दादी के हाथ में हाथ दिया और 2 मिनट में पंछी उड़ गई, कहानी वो अलग है। दीदी वहां है तो आप सोचेंगे कि दादी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कैसे बना दिया बाबा, क्योंकि दादी तो बाहर रहती थी, दीदी अंग संग रहती थी, तो सामने दादी है तो दादी को पावर दे करके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया। अब सबको दादी फोन करती है रात को 9 बजे कि बाबा अव्यक्त हो गए, तो सब लोग बोलते हैं कि तुमको 9 बजे मजाक करने का टाइम है कि मजाक कर रही है, बाबा कभी अव्यक्त हो सकता है, क्योंकि बच्चों को कूट कूट करके भरा था कि नहीं बाबा अंत में हम सब बाबा के साथ जाएंगे, बाबा पहले छोड़ के बच्चों को जा नहीं सकता है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा भी है, मम्मा के जाने के बाद भी सब बच्चों को थमाया, कहानियां अलग है। तो दादी की बात कोई माने नहीं, फिर दादी को परिचय देना पड़ता था, नहीं मैं पार्टी लेके आई थी, बाबा ने मुझे रोक दिया, ऐसे ऐसे हुआ है, बाबा वक्त होगा, तो लोग मान जाते थे ये ठीक बोल रही है। तो दीदी को फोन गया, दीदी मेले में थी, फोन लगे नहीं। आज तो हर आदमी के जेब में मोबाइल है, फोन है, पहले फोन दो ही होता था, एक यीशु दादी के ऑफिस में, एक निर्भय भाई के ऑफिस में, यज्ञ में दो ही फोन होता था, पुरानी बहनें हैं उनको पता होगा, दो ही फोन होता था, ट्रंक कॉल करना पड़ता था, यहां से आबू रोड ये होना करना होता था तो ट्रंक कॉल करना पड़ता, बुकिंग करनी पड़ती थी, जोधपुर से लाइन आता था, फिर कहीं बात करना पड़ता था, इतना ये था। तो उस दिन एक्सचेंज वालों ने भी बहुत सहयोग दिया, दादी को मदद किया, सब जगह मैसेज गया, लोग आ गए, दीदी भी आ गई, दीदी माने नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, दादी आप मजाक करती हो, मजाक का टाइम है क्या, नहीं दीदी आप आ जाओ, जहां भी हो आ जाओ, दीदी आ गई। तो मतलब कि तब से दीदी और दादी, दादी को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया, दीदी को ज्वाइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव थी। तो दीदी में इतनी पावर थी, इतनी तपस्या था, इतनी लगन थी, सबको प्यार बहुत देती थी। कन्याएं होती थी वो ज्ञान में नहीं चलना चाहती थी, नहीं माँ बाप के साथ आती थी, माँ बाप चाहते थे कि कन्या दीदी ज्ञान में चल जाए, तो उनके साथ दोस्ती करती थी, अरे तुम मेरी सखी है, तुम मेरे साथ आओ, हर कन्या को सखी, कहां दीदी इतनी बड़ी उम्र वाली और उनको सखी बना लेती थी। अब कन्याएं दीदी बोले कि हमारी तुम सखी है तो अपन कन्याएं पीछे पीछे हो जाती थी। दीदी को इतनी पालना का ये था, दीदी शाम को तैयार होती थी, वो कन्या को बुला लेती थी, बोलती थी अरे तुम मुरली सुनाओ, अब वो मुरली दीदी को सुना रही है, दीदी तैयार हो रही है। तो इससे क्या हुआ कि कन्याओं को फिर मुरली पढ़ने का रस बैठ गया। कैसे देखो किसको निकालना होता है, नाम नहीं बताएं, इतनी कन्याओं को दीदी ने निकाला, इतनी परख, कोई वीआईपी आता था उसको कैसे हैंडलिंग करना है, कभी मुरली नहीं सुनाती थी लेकिन ज्ञान स्वरूप थी, उनके नेत्र में, उनके नयनों में इतना पावर था। अंग्रेज आते थे, दीदी क्लास नहीं कराओ, दीदी योग कराओ, दीदी योग कराती थी, उनमें शक्ति भर जाता था, उनके नयन गीले हो जाते थे, इतना दीदी में पावर था। दीदी त्याग और तपस्या के मूर्ति थी। उन दिनों में मैं अकेले यज्ञ में डॉक्टर था, तो मेरी भी कहानी अलग है, हम अपना सुनाएंगे तो टाइम पूरा हो जाएगा। तो दीदी एक बार बीमार हुई, ब्लड प्रेशर था, शुगर था, तो रात को मेरे को बुलाई कि मेरा बीपी जरा चेक कर दो, बीपी हाई था, मैं बोला कि दीदी बीपी हाई है, सुबह उठिएगा नहीं, सो जाइए तो सुबह तक बीपी ठीक हो जाएगा। तो मेरे को क्या जवाब देती है, भाव, वो सिंधी में भाव बोलते हैं, भाव मैंने भाई मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, सुबह जो बाबा प्रेरणा देगा वो करूंगी, अभी हम बाबा को बोल दूं कि बाबा मेरा बीपी हाई है, मैं सुबह उठूंगी नहीं तो बाबा मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्ची छुट्टी ले लिया है, मैं क्यों जाऊं, नहीं, जो सुबह बाबा कहेगा वैसा करूंगे। और मैं देखता था कि दीदी सुबह उठ करके आकर के योग करा रही, पहले दीदी योग कराती थी, दादी योग कराती थी, तो दीदी योग करा रही है, हम पीछे आकर के योग करने आते थे, इतना योग में दीदी को रुचि, इतना पावर, बेगरी पार्ट था लेकिन किसी को फील नहीं होने दिया। एक बार की बात है, हम उन दिनों में किचन में काम करते थे सूरज भाई के साथ, कहानियां लंबी है, बीच बीच में अपना भी थोड़ा हम चखाचूखी करा दें, तो हमको 2:30 बजे उठ करके चाय बनाने की ड्यूटी थी। अब 2:30 बजे, वो बारिश इतनी, लकड़ी के ढकने के लिए कोई शेड नहीं है, बेगरी पार्ट है, सारा दिन रात लकड़ी पर पानी पड़ता है, उस लकड़ी को हम चूल्हे पर गर्म करते थे या सुबह वो जलाते थे, उस दिन लकड़ी गर्म नहीं हुई, गीली थी, मैं फूंक फूंक करके क्योंकि बेगरी पार्ट था, मिट्टी का तेल भी नहीं यूज कर सकते हैं, और भी तेल था वो भी यूज नहीं कर सकते थे। तो फूक फूक करके वो बड़ा मुश्किल से आग जलाया, तो उसके धुआं आंखों में लग गई। गुरुवार का दिन था, भोग बना करके और जब कपड़े चेंज करके अमृत लेने गए, उन दिनों में छोटा परिवार था, दीदी दादी संधली पर बैठ के एक एक मुख में दृष्टि देती थी और अमृत पिलाती थी, सिर पर हाथ रखती थी, पावर। वो भी एक दिन था, इतना प्यार से उन्होंने सींचा है। तो दीदी जब मैं गया तो दीदी मेरे को दृष्टि दिया, सिर पर हाथ रखा, मुख में जल पिलाया, अमृत पिलाया और कहती है, भाऊ आंख लाल है। हम बोला जी दीदी, चूल्हा नहीं जल रहा था, फूंक फूंक करके वो धुआं लग गया है। अत नहीं, थोड़ा अपना ध्यान भी रखो। मैंने मां की तरह इतना प्यार, नहीं तो इतना यंग लाइफ में इतना पढ़ लिख करके कैसे हम आकर के वो भी चूल्हा किचन का काम करें एक डॉक्टर होकर के। लेकिन दीदी दादी का इतना प्यार, डॉक्टरी भूल गए। तो दीदी इतना प्यार करती थी, इतने संभाल करती थी, यज्ञ का कंट्रोलर होते हुए कपड़ा आदि सब कुछ देना दीदी के हाथ में था। किस वीआईपी को कैसे सेवा करना था दीदी को आता था। कोई भाई बहने यज्ञ में आते थे, बड़े थे, जैसे आपके बुरहानपुर से गोवर्धन भाई आते थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, केले का बिजनेस था, बड़े उन दिनों में बड़े थे, आज भी बड़े हैं। तो कितना दीदी ध्यान रखती थी, ऐसे ऐसे भाइयों का, बहनों का, परिवार का ध्यान रखती थी। बुजुर्ग थी लेकिन ध्यान रखती थी, इतना निरहंकारी थी। दीदी के सामने ये हॉल बन रहा था, बेगरी पार्ट है, पैसा नहीं था लेकिन हॉल बनाना जरूरी था, बाबा के बच्चे आ रहे हैं। तो दिन भर पत्थर मजदूर तोड़ते थे, शाम को दीदी दादी हम सब जाकर के पत्थर उठाते थे। अब दीदी को बुजुर्ग है, घुटने से नहीं चला जाता है, दीदी आप नहीं जाओ, हम लोग काम आपका बदले हम उठाएंगे पत्थर। अत नहीं, तुम उठाओगे तुम्हारा भाग बनेगा, हम उठाएंगे मेरा भाग बनेगा। दीदी जाकर के पत्थर बड़ा नहीं उठा सकती, छोटा पत्थर उठा करके डालती थी। इतना दीदी को यज्ञ से प्यार, किसी को कुछ बोलती नहीं थी लेकिन डिसीजन बहुत पावरफुल। विदेश गई दीदी ने, ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है दीदी ने शुरू किया, नहीं सारा दिन कारोबार में सब लग जाते हैं, किचन में कारोबार चलता है, कारपेंट्री में कारोबार चलता है, कंस्ट्रक्शन में कारोबार चलता है, नहीं, कारोबार करते परमात्मा की याद। तो ट्रैफिक कंट्रोल जो सुन रहे हैं, दीदी ने शुरू किया। शाम का नुमा शाम का योग 7 से 7:30 दीदी का कंपल्सरी था, सब सन्नाटा हो जाता था, सब दीदी गई योग करा रही है, कौन इधर बाहर घूमेगा, कौन बाहर बैठेगा, सब हम लोग भाग करके हिस्ट्री हॉल में जाते थे। अगर कोई नहीं गया किसी कारण से तो दीदी उसको बुला के पूछती थी, भाऊ आज आप योग में आए नहीं, पूरा हो गया, जवाब नहीं है, फिर उस दिन से वो कभी वो लेट नहीं आएगा, कभी ये नहीं आएगा, प्यार से लेकिन शिक्षा जरूर देती थी। तो इस तरह से दीदी दादी ने यज्ञ को पाला है। आज जो हम देख रहे हैं यज्ञ इतना बढ़ रहा है, ये दीदी दादी हमारी दादियों का फल है, हम लोग खा रहे हैं, हमारी कुछ एक्टिविटी नहीं है, हमारी कुछ तपस्या नहीं है। बाबा से इनका इतना प्यार था, कुछ भी काम छोटा सा भी करना है बाबा से पूछ के करना है। ये बाबा ने इनमें, इनके रग रग में भर दिया था। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, अभी ब्रह्मा को क्या पूछना है कि हम जा रहे हैं बॉम्बे जाएं या नहीं जाएं? नहीं, पूछ के प्रोग्राम बनता था। एक बार की बात है, सामान गाड़ी आ गई, यहां गाड़ी अपनी तो होती नहीं थी, बाबा के लिए टैक्सी आता था, टैक्सी आ गई और सामान रख दिया गया। बाबा संतरी दादी को बोला कि बाबा से पूछ क्या कि मैं जाऊं। बाबा ने वतन में रेड झंडी दिखा दिया। संदेशी आ गई, संतरी दादी नीचे आके कहती बाबा, बाबा तो नहीं दिखाई दिया लेकिन लाल झंडा दिखाई दिया, लाल रेड झंडा, मैंने नहीं जाना है भाई, क्या होगा? फिर दोबारा जाओ। दोबारा बाबा बोला कि रेड झंडा से पता नहीं लगा कि नहीं जाना है, बच्चे को नहीं जाना है, सामान उतरवा दिया। ये नहीं, हर बात बाबा पूछ करके संदेशी से संदेश लेकर के करते थे। तो उसी तरह दीदी दादी हर बात बाबा से पूछती थी, बाबा ये करें कैसे करें, आपका क्या राय है, बाबा राय देते थे। कोई मकान लेना है, कोई जमीन लेना है, कोई कुछ करना है, कोई नया काम करना है, कोई सेवा करनी है, सेवा का प्रोजेक्ट बनानी है, बाबा कमरे में आकर के गुलजार दादी के तन में, एक तरफ दीदी एक तरफ दादी, बीच में यीशु दादी सामने बैठ करके नोट्स लेती थी। इतना पालना। आज न गुलजार दादी है, न दीदी है, न दादी है। यज्ञ का कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा है? बाबा हर बच्चों में प्रवेश होकर अपना काम करा रहा है। छोटी छोटी बहनें हमारी टीचर, बड़े बड़े मकान बाबा के भवन तैयार करके सेवा कर रही है। कर रही है या नहीं कर रही है? उन दिनों में अपना मकान नहीं था, किराए पर मकान था। आज तो 90-80% सब बाबा का अपना भवन है। कौन करा रहा है? बाबा हर बच्चों से करा रहा है। कितना जिसका लगन जितना है उतना उसमें प्रवेश होकर के करा रहा है। तो क्यों लोग कहते हैं कि बाबा तो है नहीं, दादी है नहीं, दीदी है नहीं, हमको ये नहीं होता है? नहीं, वो नहीं है तो ज्यादा प्यार बरसा रहा है डायरेक्ट भगवान। जैसे प्रैक्टिकल, आपके घर में पोतरा है, छोटा सा बच्चा पोतरा आया है, आपका प्यार बच्चे से है, बहू से है। जब पोतरा आ गया तब प्यार कहां जाएगा? छोटे पोतरे में होगा ना। कहां से भी आएंगे तब नजर आपका पोतरे पर पड़ेगा, गोदी उसको लेंगे, प्यार उसको देंगे, ध्यान उसको देंगे, बच्चे को नहीं देंगे, वो बड़ा है, बहू को नहीं देंगे, बड़ी है। तो हम सब पोतरे बैठे हैं, बाबा डायरेक्ट हम पोतरों को पालना दे रहा, हम लोगों से काम करा रहा है। ये ना समझे कि बाबा नहीं है, दादी नहीं है, दीदी नहीं है, बड़े नहीं है। बाबा हर बच्चों से करा रहा है, सब काम हो रहा है। रिट्रीट सेंटर बन रहे हैं, बड़े बड़े ये हो रहे हैं। एमओयू साइन दादी के टाइम में नहीं हुआ था सरकार के साथ, दादी के जाने के बाद हुआ है, अभी मार्च में हुआ है। कौन करा रहा है? ऊपर बैठ करके वो लोग सकास दे रहे हैं, बाबा एक एक बच्चे से करा रहा है। तो हमारी दादियों का, दीदी का, ये तपस्या का फल है। एक बार की बात है, हम लोग बेकरी पाठ भल था लेकिन दादी दीदी ब्रह्मा भोजन साथ में करती थी, बुजुर्ग थी, कुर्सी जग में नहीं था, फिर भी जमीन पर बैठ करके दीदी दादी, और यही हिस्ट्री हॉल में दो लाइन लगता था, हम लोग बैठते थे। तो हम लोग बच्चे थे, मिठाई आया, स्वीट आया, पहले खा लिया, शिव बाबा के याद करके खा लिया। दीदी समझाती थी, खा लिया उस समय टोकती नहीं थी, बाद में कहती थी नहीं अच्छी चीज बाद में खाया जाता है। तो क्योंकि हम लोग दीदी के साथ बैठते थे भोजन के लिए, ब्रह्मा भोजन के लिए, तो मिठाई खा लिया तो दीदी उस समय नहीं बोलेगी, बाद में बोलेगी कि नहीं भाऊ अच्छी चीज पहले पीछे खाया जाता है पहले। इतना मन छोटी छोटी बातें दीदी ट्रेनिंग देती थी। ब्रह्मा भोजन के बाद ये बहुत अंगूर का यहाँ बेल था, अंगूर बहुत होते थे उन दिनों में, यहाँ दीदी दादी बैठ करके पान सुपारी खिलाती थी। कोई फ्रूट दे दिया पान सुपारी हो गया, कुछ ये दे दिया पान सुपारी हो गया, नाम पान सुपारी है लेकिन टोली दे दिया, परिवार की तरह पालना। दीदी गंभीर थी, ऑफिशियल थी, डर लगता था, पालना मां की तरह देती थी लेकिन डर भी था। दीदी आ गई, चुप दीदी। लेकिन जितना ये थी उतना बड़ा जौली थी, रमणीक थी दीदी क्लास में। एक भाई था बलदेव भाई, वो थोड़ा शरीर से बहुत डार्क थे, उनका दांत बाहर था तो अंधेरे में उनका दांत चमकता है, अंधेरे में तो दिखाई नहीं देते हैं। तो दीदी उनको संधली, वो जयपुर रहते थे, तो दीदी संधली पर बैठा करके हिस्ट्री हॉल में और बोलते बलदेव जयपुर का समाचार सुनाओ, और लाइट वाले को इशारा कर देती थी तुम ही लाइट बंद कर देना। अब अंधेरे में वो हंसता था तो उसके दांत दिखाई देता था, कुछ नहीं दिखाई देता था। इस तरह से दीदी मैंने जौली, इतना ऑफिशियल गंभीर लेकिन जौली इस तरह से दीदी थी। हम लोगों को पिकनिक पर ले जाती थी या पान सुपारी देने के लिए यहां बैठाती थी, चवन्नी दीदी का यहां किसी को बोलती थी जोर से दबा करके एकदम चिपका दो ताकि चिपक जाए, और वो भाई जोर से दबाता था ताकि वो चिपक जाए, लेकिन वो धीरे से निकाल लेता था। और वो योग में है अभी। दीदी बोलती थी इस चवन्नी को हाथ नहीं लगाना, सिर हिला करके नीचे गिराओ। और वो सिर हिला रहा है जोर जोर से, सब हंस रहे हैं क्योंकि चवन्नी तो है नहीं, और वो तो देख रहा है कि इतना जोर से चिपकाया है तो जरूर होगा। मैंने कहने का भाव कि इस तरह से रमणीक भी थी लेकिन गंभीर थी। डिसिप्लिन दीदी के रग रग में था, लेकिन सबको बहलाती थी, हंसाती थी, सबको प्यार देती थी। एक बार की बात है, समय हो गया, दीदी आ गई। एक और बात दीदी का सुना के पूरा करेंगे। दीदी दादी गुरु शिखर हम लोगों को ले गई। अभी दीदी के पांव से तो चला नहीं जाता था, तो कुर्सी पर हम लोग दीदी को ऊपर ले गए। दादी तो पहाड़ी चढ़ जाती थी। अब बारे वहां दरी बिछा दिए, सब कुछ हो गया, अब पिकनिक वहां हो रहा है, बारिश जोर से आई, छाता तो है नहीं, तो उस दरी को हम लोग भाई सब पकड़ लिए, सब बहने सब भाई नीचे दरी के आ गए। वो इतना बारिश हुआ कि दरी से भी पानी नीचे आना लगा, क्योंकि वो छतरी तो है नहीं, तो सब गीले हो गए। तो दादी बोली कि नहीं सब बस में बैठो, अब घर चलेंगे, यहां नहीं, अभी पिकनिक यहां नहीं होगा। फिर बस में दीदी दादी पकौड़ा खिलाई, तो दादी दीदी को कैसे अभी उतारे, फिर कुर्सी पर उतार करके। मैंने कहने का भाव, दीदी बुजुर्ग थी, घुटने में तकलीफ था, लेकिन बच्चों को परिवार को भाषण देना हर जगह जाती थी। लास्ट के टाइम दीदी को थोड़ा कैटरेक्ट की सर्जरी करानी थी, तो हम लोगों से छुट्टी लेकर के गई कि कैटरेक्ट का सर्जरी कराना है। हम लोगों ने छुट्टी दिया और वहां गई तो डॉक्टर ने चेक किया तो बोला कि कैटरेक्ट पहले दीदी को कोई ब्रेन में ट्यूमर लगता है, चेक हुआ तो एक ट्यूमर निकला। उसकी सर्जरी दीदी ने भगवती से, हम लोगों ने कहा कि भाई भगवती से कराया जाए, न्यूरो सर्जन बॉम्बे का नंबर वन था, उसने किया। इंदिरा गांधी ने उसको बुला लिया दिल्ली, अब वो नहीं था तो ऑक्सीजन ड्रॉप कर गया, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो दीदी कोमा में गई। फिर दीदी बाहर नहीं आई, 21 दिन तक रही कोमा में, और 21 दिन के बाद 28 जुलाई को दीदी सुबह 9 बजे शरीर छोड़ा। सारे ब्राह्मणों में आवेश, इस डॉक्टर को ठीक करना चाहिए, दीदी को इसने ये कर दिया, दीदी इतनी अच्छी थी, अच्छी गई थी। शाम को दीदी का अग्नि संस्कार हुआ दोपहर को, शाम को बाबा आ गए और बाबा ने कहा कि न भगवती, जो सर्जन था वो भगवती नाम था, न दीदी का न भगवती का दोष है न भगवान का दोष है, ये ड्रामा में था, इसलिए वो डॉक्टर का दोष नहीं है न भगवान का दोष है कि भगवान जल्दी बुला लिया, नहीं, ये ड्रामा में था, इसलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ। और दीदी 28 जुलाई को अव्यक्त हो गई। ओम शांति, थैंक यू।
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा
सभी ने बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुने, सीखने को भी मिला इससे। और सुन रहे थे हम बारिश का उदाहरण, तो कल इन लोगों का भी नकीले की सैर थी, बाबा की पहाड़ी की सैर थी, लेकिन बारिश खूब आ गई। तो ऐसे भी दिन कभी कभी आते हैं कि बारिश को भी फेस करना पड़ता है और उसको भी एंजॉय करना पड़ता है। भ्राता जी अपना अमूल्य समय निकाल कर आए आपको लाभान्वित करने के लिए। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।